धवला पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर 20। गोदमथेरं पुनोजिनं वीरं नमीऊणखेत्तसुत्तं जहोवये संपयासेमो। आचार्य श्री भीमसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो प्रथम खंड है जीवस्थान नामक और अपना विषय है क्षेत्रानुगम। ये चौथी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 105 पर हम आ गए 105। अपनी बात योग मार्गणा की चल रही है। मनोयोगी और वचन योगी जीवों की बात अभी हो गई है। काय योगी इन जनरल हमने देखी है। अभी औदारिक काय योगी की भी हमने बात पढ़ी थी, उसी का विशेषार्थ पढ़ते हैं। हाँ, औदारिक काय योगी मिथ्या दृष्टि, क्योंकि एक एक गुणस्थान वाले औदारिक का योग कहने से सहयोगी तक हो गए, इसमें से मिथ्या दृष्टि जो उनका क्षेत्र बताया पूरा लोक होगा। उसमें उन्होंने फिर वैक्रियक समुद्रगत औदारिक कायोगी की बात की थी, यानी वो वैक्रियक शरीर वालों की बात नहीं है, औदारिक कायोग में जो वैक्रियक समुद्रात करते हैं। अभी इसी का विशेषार्थ यहाँ कह रहे हैं। 105 पेज पर है ब्रह्मा।
संख्या का भाग बड़ा है ना, असंख्या का भाग बड़ा है।
हाँ, आपका ये प्रश्न है कि संख्यात्वा भाग बड़ा है कि असंख्यात्वा भाग बड़ा है। मैं आपको पूछती हूँ, संख्यात के लिए हम मान लेते 5 और असंख्यात के लिए मान लेते 20 समझाने के लिए, तो 100 का पांचवा भाग बड़ा है कि 20वां भाग बड़ा है? पांचवा। क्या किया आपने, भाग दिया तो ऊपर की लब्ध राशि बड़ी आती है। छोटी संख्या से भाग देते तो लब्ध राशि बड़ी आती है, बड़ी संख्या से भाग देते तो लब्ध राशि छोटी आती है। तो संख्या तो आ भाग, यानी संख्या से भाग देते हैं तो बड़ा है, असंख्यात्वा भाग यानी बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो छोटी आ जाएगी, अनंत का भाग देगी किसी से तो और छोटी आएगी। क्योंकि समझ कर केवल हमने बता दिया तो आप अरे क्या बताया था संख्यात्वा के असंख्यात्वा ऐसा नहीं।
हाँ,
इसलिए ये उसके कारण आपको पता हो जाएगा। इस तरह से विचार करेंगे तो ख्याल आता है। अभी विशेषार्थ को पढ़ना है अपने को। इस उक्त कथन का अभिप्राय यह है कि ये वैकृत समुदाय की जो बात हमने औदारिक कायोगी में कल देखी थी, उसकी बात यहाँ दोबारा समझा रहे हैं कि वैकृत समुदाय को प्राप्त औदारिक कायोगी जीवों का क्षेत्र तिर्यक लोक का असंख्यात्वा भाग बताया है। तब शंका की जा सकती है कि वैकृत शरीर वाले जीवों के वैकृत समुदाय का क्षेत्र तो तिर्यक लोक का संख्यात्वा भाग बतलाया गया है और यहाँ तो असंख्यात्वा कहते हैं, फिर यहाँ उसका क्षेत्र तिर्यक लोक का असंख्यात्वा भाग क्यों कहा? इस शंका आशंका का समाधान करते हुए धवलाकार कहते हैं कि यहाँ पर औदारिक कायोग का प्रकरण है, अतएव औदारिक शरीर वाले मनुष्य और तिर्यंचों के जो वैकृत समुद्घात होता है उसका क्षेत्र तिर्यक लोक के असंख्यात्वे भाग प्रमाण ही हो सकता है, अधिक नहीं। हाँ, वैकृत शरीर वाले देवादिकों के जो वैकृत समुद्घात होता है उसका क्षेत्र अवश्य तिर्यक लोग के संख्यात्वे भाग प्रमाण है, वो भी कैसे निकाला, तो उनकी संख्या से निकाला, किंतु उसका यहाँ प्रकरण नहीं है क्योंकि औदारिक का योग के साथ वैक्रियक समुद्घात का क्षेत्र कहते समय वैक्रियक का योगी सहगत वैक्रियक समुद्घात का क्षेत्र कहना असंभव है। यानी जो देव वैक्रियक शरीर बना के यहाँ आते हैं या कहीं पर भी चले जाते हैं तो उसका अर्थ क्या है, उनके वैक्रियक का योग है, और यहाँ औदारिक का योगी उनके वैक्रियक समुद्घात लेना है, वो औदारिक शरीर की विक्रिया करते हैं।
औदारिक काय वाला व्यक्ति समुद्घात करते तो वो उनकी अवधारणा के प्रमाण से कितना गुना होता
विक्रिया करके यही मनुष्य है तो मनुष्य लोक में ही हो गए।
नहीं वो तो बराबर
और हाँ
तिर्यक लोक के तिर्यक प्रमाण
वो तो उसका असंख्या तो होगा, संख्या तो कम होगी उनकी।
नहीं पर उनकी जो अवधारणा है
शरीर की अवगाहना भी लेते हैं फिर भी उसको सब मिलकर ही बताए राशि
कितना प्रमाण
अवगाहना का प्रमाण। देखो ना हमने मनुष्य तिर्यंचों की विक्रिया समुद्घात में देखा था क्योंकि मुख्यतः भूगभूमि वालों की होती है वहां पर संख्या परंतु उनकी संख्या कितनी कम है।
नहीं नहीं मैंने प्रमाण पूछा कि अपने शरीर की
अवधारणा
है
पर ज्यादा हो तो सकता है। यहाँ जैसे बताया ना वो विक्रिया की किसने मुनि ने उसकी भी बात आई ना
वो तो एक हाथ प्रमाण
देखो
रहता है ना।
अभी हम उसका एवरेज निकाल सकते हैं और क्या है करेंगे तो कहाँ करेंगे, लाख योजन के बाद बाहर तो नहीं जाएंगे। महामती की बात कर रही हूँ, समुद्घात करके कहाँ जाएंगे, कर्मभूमि जाएंगे कि बाद में कहीं चले जाएंगे, ऊपर देवों में चले जाएंगे, राजुओं में तो नहीं जाएंगे। देखो ये हमने पहले देखा था, निकाल जहाँ 10 पद की बात बताई थी ना, मिथ्या दृष्टि की सामान्य से बात निकाली थी, वहां देख लो तिर्यंच गति में, देखो ना तिर्यंच गति में विक्रिया करने वाले जीव पेज नंबर 67 पर देखो, घनांगुल लिया था उसका क्षेत्र साधारण, देखो वहां पर क्या लिखते हैं पहली लाइन वहां से सेकंड लाइन में देखो, विक्रिया समुद्घात को प्राप्त तिर्यंच जीव पेज नंबर 67 पेज है सेकंड लाइन मिला, वैक्रियक समुद्घात को प्राप्त तिर्यंच जीव तिर्यक लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं, तो अभी हमने पढ़ा क्योंकि तिर्यंचों में विक्रिया करने वाली राशि पल्लपों के असंख्यात भाग मात्र घनांगुलों से गुणित जगत श्रेणी प्रमाण है, ऐसा गुरु का उपदेश है। उनकी तो राशि बताई है और उसका क्षेत्र यहाँ हम देखते हैं, वो तो कुछ घनांगुल इतना ही लेंगे उसका भी या प्रतरांगुल भी लेंगे, एवरेज निकालना है ना, छोटी अवगाहना और बड़ी अवगाहना वालों को एवरेज निकालेंगे वहां पर। नहीं नहीं वो तो उसका एवरेज साइज तो निकालना पड़ेगा ना, वही रहते हैं परंतु उनको उसकी अवगाहना चाहिए। नहीं वेदना समुद्घात विक्रिया
नहीं और कषाय समुद्घात की बात कर रहा हूँ,
उसकी ऐसा गुना थोड़े करेंगे, वैकृत शरीर ऐसा बड़ा नहीं कर रहे, वो विक्रिया से या तो मूल शरीर लंबा करेंगे या अन्य शरीर बनाएंगे, दोनों ही हो सकते हैं। परंतु शरीर बनाए तो बीच में जो फैले हुए प्रदेश है वो इतने, वो तो लाइन सिंगल लाइन जो होगी उतना ही, और शरीर क्या होगा ना, भी छोटी होगी, या जैसे मूल शरीर है वैसे वैकृत शरीर बनेंगे, उससे बड़ा तो नहीं हो सकता है की बात अलग। वो कितना संख्यात गुना हो जाए, ज्यादा 45 पर मिला आपको। इसमें मिलेगा शायद प्रमत्त में विक्रिया करने वाले की बात, अवगाहना वो तो मनुष्यों की अवगाहना होगी, परंतु चिरंजों के लेने हमको। सुनो जरा, अभी ज्यादा प्रश्न मत पूछो, जरा जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर निकालने का। हाँ, अभी हम पेज नंबर है अपना 105, पर अभी हम पहले की बातें कुछ ढूंढ रहे हैं। देखो 41 पेज निकालना जरा। वहाँ देवों की विक्रिया है। हाँ, कितना उसकी अवगाहना कितनी हो सकती है। वहां देवों की बात थी तो सात धनुष उससे लिया, तो संख्यात गुणांगुली उत्तर उसका, और संख्यात हजार योजन उनकी विक्रिया देखी थी। और यहाँ तो बस तीरियंचों में तो आपके अपने अपने क्षेत्र में वो विक्रिया करेंगे, ज्यादा दूर तो नहीं जाएंगे, राजुओं में तो नहीं जाएंगे, एक बात। और ये तीरियंचों में ही मिलेगा शायद, एकेंद्रीय ने अभी यहाँ पर। हाँ, एकेंद्रियों की उनकी अवगाहना मेजॉरिटी होगी फिर। देखो तीरंजों में भी औदारिक का योग में आया विक्रिया, मेरु के बराबर शरीर को करने को महिमा। वो तो किसको कितना बड़ा छोटा कर सकते हैं, मगर वो तो गिने चुने संख्यात हो गए ना। विक्रिया रिद्धि की बात है वहां पर, और वैकृत समुद्घात के समुद्घात में मिलेगा शायद आपको, परंतु वैकृत समुद्घात करने वाले देवों की तो बात आ गई, यहाँ तो वैकृत समुद्घात करने वाले हाँ मनुष्य तीरंजों की बात चाहिए, और उसमें भी वो मनोयोग का योग वाला नहीं चाहिए, औदारिक का योग वाला चाहिए उस समय भी। हाँ, वो तो रिद्धि की बात है, वो तो बड़ा कर सकते। हाँ, पर वो तो संख्यात गुणा ही हो गया ना, मेरु क्या होगा, यानी संख्यात गुणा हो गया। अभी हम आगे पढ़ेंगे, अपने विषय पर चलेंगे। वो रिद्धि प्राप्त औदारिक वाले भी कर सकते, रिद्धि प्राप्त मुनि। अब अपना विषय चलेगा, आप जरा पहले पहले से ढूंढ लेना, आप अवगाहना की जो अभी हमने भेद देखे थे, पहला अपना जो विषय हो गया है उसमें आपको मिलेगा, आप ढूंढ के हमको कल बताना। Thank you. क्योंकि ये पहले हम पढ़ चुके, अभी ये मिल नहीं रहा है ना, अभी एक एक पेज उसको देखना पड़ेगा।
ये पढ़ा नहीं है इसलिए तो
वो तो उसमें वही तो अवगाहना से उसको मूल राशि के वहाँ यहाँ भी लिखा तिरंतों में विक्रिया करने वाले जीव प्रचुर संभव नहीं है। अवगाहना का गुणा संख्यात घनांगुल प्रमाण अथवा एक घनांगुल वहाँ आया है पेज नंबर 67। पहले मैं वहीं से ऊपर की लाइन बताई थी, उसी में लास्ट लाइन है। संख्या घनांगुल या एक घनांगुल लिया, आपका काम बचा है हमने ढूंढने का। प्रश्न पूछने वाले को स्वयं भी ढूंढना चाहिए, खाली प्रश्न पूछ के नहीं काम चलेगा। 105 पेज पर देखो, स्वभावे नाम ही हम 105 पेज पर आए थे। कल हमने वैकृत समुदाय वाले काय औदारिक कायोगी देखे थे। वैकृत समुदाय तो देव करते हैं तो वो बहुत दूर तक करते हैं, वहां पर भी हजारों योजन ऐसा लिया था। इन जनरल भले असंख्यात योजन जा सकते फिर भी वहां पर भी इन जनरल वो बात की थी। यहाँ पर औदारिक कायोग के साथ विक्रिया करने वाले वो मनुष्य और तिरंच होते हैं। अभी यहाँ पेज नंबर 105 पर पांचवी लाइन में लास्ट में यहाँ पर औदारिक कायोग का प्रकरण है। अतएव औदारिक शरीर वाले मनुष्य और तिरंचों के जो वैकृत समुद्घात होता है उसका क्षेत्र तिर्यक लोक के असंख्यात वे भाग प्रमाण ही हो सकता है, अधिक नहीं। और उस हाँ ये लगा है ना, हाँ क्योंकि देवों की बात हुई तो तिर्यक लोक का संख्यात भाग लिया था, यानी ये अवगाहना जो हम एवरेज निकालते या संख्यात घनांगुल या घनांगुल। ये पेज नंबर 67 पर हमने देखे, भले वहां सासादन के प्रकरण में था परंतु करने वाले तो वही है ना जो सासादन हो या मिथ्या दृष्टि हो। हाँ, वैक्रियक शरीर वाले देवादिकों के जो वैक्रियक समुदात होता है उसका क्षेत्र अवश्य तिर्यक लोक के संख्यात वे भाग प्रमाण है। वो आगे भी बात आएगी, पहले भी हम देवों के प्रकरण में देख चुके थे, किंतु उसका यहाँ प्रकरण नहीं है क्योंकि औदारिक कायोग के साथ वैक्रिय समुद्घात का क्षेत्र कहते समय वैक्रिय का योग सहगत वैक्रिय समुद्घात का क्षेत्र कहना असंभव है। अब ये बात अपनी हुई चुकी थी, दोबारा पढ़ ली। ये तो मिथ्या दृष्टि की बात उन्होंने बताई, मिथ्या दृष्टि में जो कोई कोई अलग अलग जो होते हैं उसकी बात सब हमने देखा ना। मिथ्या दृष्टि में वैक्रिय का योगी वाले जीव उनको स्वस्थान कितना है, पूरा लोग, क्योंकि औदारिक कायोग एक इंद्रियों में भी पाया जाता है, तो स्वस्थान भी लिया, उसमें वेदना भी है, कषाय भी लिया, मारणांतिक भी लिया, उपोपात भी लिया। विक्रिया की बात यहाँ अलग से बताई। योग नहीं होता, प्रवृत्ति को मत देखो, हाँ योग की बात है। अब हम 105 पर नया सूत्र पढ़ेंगे। शासन सम्मादित्य पहुड़ी जाव सजोगी केवली लोगस असंख्य यदि भागे। ये मेरा प्रश्न है, सयोग केवली को पूरा लोक क्यों नहीं लिया? समुद्घात तो करते हैं ना पूरे लोक में, यहाँ क्यों छोड़ा? हमेशा तो उसको ले लेते थे, अब यहाँ हाँ क्यों छोड़ा? बोलो प्रतिभा से। मैंने प्रश्न पूछा, हमेशा हम सयोग केवली का क्षेत्र जब बताते हैं तो असंख्यात भाग, बहुभाग और पूरा लोक, ऐसे तीनों ही पद्धति से बताते हैं, तो यहाँ इनको क्यों छोड़ा? ये हमारा प्रश्न, इन पांच में से किसी को उत्तर देना है। हाँ, क्योंकि जब प्रतर होता है तो कारमान का योग है, और हमने का योग में उनको लिया था। अभी सब सोच रहे हैं ना क्या क्या हमारे क्राइटेरिया क्या है, उसको सोचना है। प्रतर लोक पूरण और प्रतर में कारमान का योग है। आप कहेंगे कपाट में भी तो इतना फैलता है, तो उसमें तो औदारिक मिश्र का योग है और दंड में औदारिक का होता है, वो तो लोक का असंख्यात भाग है। ख्याल में आई बात? तो देखो ये सहयोगी को भी लिया यहाँ पर, शासन सम्मादित्ति पढ़ूरी जाव सहयोगी केवली लोगस असंख्य यदि भागे। अभी हिंदी में नीचे देखते हैं, सासादन सम्य दृष्टि गुणस्थान से लेकर सहयोगी केवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती हर एक का एक अलग 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 हाँ औदारिक कायोगी जीव लोक के असंख्यातवे भाग में रहते हैं। शंका यही प्रश्न पूछा यहाँ पर, सहयोगी केवली भगवान लोक के असंख्यातवे भाग में रहते इतना ही क्यों कहा, इतना ही क्यों कहा इन्हें, वो जो बाकी बातें क्यों नहीं कही? उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि औदारिक कायोग से निरुद्ध क्षेत्र का निरुद्ध ने रोका हुआ इन्हें युक्त वर्णन करते समय औदारिक मिश्र कायोग और कारमाणिक कायोग के साथ में होने वाले कपाट, यानी औदारिक मिश्र के साथ कपाट नाम का समुदात है और कारमण कायोग के साथ प्रतर और लोकपूरण है, उनका होना संभव नहीं है। यानी उस समय उनके कायोग दूसरे है, औदारिक कायोग वहां नहीं रहता, इसलिए औदारिक कायोगी सहयोगी केवली लोक के असंख्यातवे भाग में रहते हैं ऐसा कहा है। ये जो दंडाकार होते तो कितना भले वो 14 राजू ऊपर से नीचे तक फैले है, परंतु उसकी एरिया कितनी है, ये 12 अंगुल का जो कुछ उनका जो शरीर प्रमाण जो उसका परिघ उसका जो क्षेत्र है उतना फैले है, वो कैलकुलेट करेंगे तो लोक का असंख्यातवा भाग होता है। अभी आगे सासादन सम्य दृष्टि और असंयत सम्य दृष्टि औदारिक कायोग, औदारिक कायोग लगाया जीवों के उपपाद पद नहीं होता। ब्रह्मा क्यों नहीं होता, ये हमने पहले भी देखा था। हाँ, या तो कारमाण कायोग कहेंगे, कारमाण कायोग कहेंगे या औदारिक मिश्र होगा उपपाद पद में, क्योंकि जो मोड़ वाले सहित गए हैं तो पहले मोड़ तक पहुंचे हैं और पहले मारणांतिक समुदाय किया हुआ था इसलिए प्रदेश ऑलरेडी फैल चुके हैं उत्पत्ति के स्थान तक, तो उपपाद वाला जो द्वितीय दंड है तो वो तो लंबा है फैला हुआ, परंतु वो बात यहाँ नहीं हो सकती क्योंकि उस समय कारमाण का योग कहेंगे वो लंबा फैला हुआ, या कोई डायरेक्ट पहुंचता है वहां मिश्र का योग उसका चालू होता है, औदारिक का योग नहीं है। उपपाद पद नहीं होता तो आगे के गुणस्थानों की बात क्यों, ये दो ही गुणस्थान क्यों लिए, बाकी में होता है क्या? तीसरे गुणस्थान को क्यों नहीं लिया? होता ही नहीं। पांचवें को नहीं लिया, छठे को नहीं लिया, उसमें तो उपपाद है ही नहीं, पर जिनमें उपपाद पद है उनमें यह औदारिक का योग वालों की वो नहीं है। ख्याल में आती है बात? समझ में? जो दूसरे और चौथे के साथ मरकर अन्य भाव में जाता है, यानी उपपाद में दूसरा और चौथा गुणस्थान तो पाया जाता है, परंतु उस समय औदारिक कायोग नहीं है। हमें एट ए टाइम बहुत सारी अपेक्षा देखना है, जीव कांड में तो 20-20 अपेक्षा लगाते हैं ना, उसका जीव समाज कौन सा है, कौन सा गुणस्थान है, कौन सी लेशा है, कौन सा योग है, वो सब नहीं तो एक अपेक्षा लेते तो दूसरी छूट जाती है। आगे देखते हैं, प्रमत्त गुणस्थान में मिला नीचे से चौथी लाइन, आहारक समुद्घात पद भी नहीं है। क्या कहना चाहते? प्रमत्त गुणस्थान वर्ती यानी छठे गुणस्थान में वो आहारक समुद्घात करते हैं कि नहीं करते हैं? करते। जब आहारक समुद्घात करते हैं तो योग कौन सा रहेगा? आहारक का योग होगा। आहारक का योग या मनोयोग या वचन योग होगा, तो इसलिए वो क्या कहेंगे, प्रमत्त गुणस्थानवर्ती औदारिक कायोगी की बात चल रही है तो उनके आहारक समुद्घात पद भी नहीं है, यानी उससे समय उनको आहारक वाला पद वो नहीं है, उसको नहीं लेना। देखो तेजस की बात नहीं, क्योंकि तेजस के काल में तो औदारिक कायोग मनोयोग वचन योग कुछ भी हो सकता है, उसका निषेध नहीं लिया आहारक ने, क्योंकि उसके स्पेशल योग अलग है वहां पर, क्योंकि यहाँ पर औदारिक का योगियों का क्षेत्र बताया जा रहा है। शेष गुणस्थानों में यथासंभव पद जानकर कहना चाहिए। यथासंभव पद का अर्थ समझते हैं? अभी हम देखते हैं दूसरे गुणस्थान में यथासंभव पद क्या क्या हो गए। स्वस्थान तो होगा ही, विहारवत होता है, पहले हमने देखे साधन में विहारवत है, वेदना है, कषाय है, वैक्रिय भी है, मारणांतिक भी है। अभी उपपाद यहाँ नहीं लेना है हमको, औदारिक कायोग में नहीं लेना, अन्यथा तो लेते हैं हमको। यहाँ तक बात ख्याल में? तीसरे गुणस्थान में क्या नहीं है? मारणातिक और उपपाद नहीं होता तीसरे गुणस्थान में। चौथे गुणस्थान में भी हमने अभी देखा था उपपाद को यहाँ नहीं लेना है, मारणातिक हो सकता है ना, चौथे गुणस्थान में हो सकता है। बाकी वो विक्रिया वगैरह तो औदारिक कायोगी वाले की विक्रिया तो वहां पर भी होगी। पांचवे गुणस्थान में ये यथायोग्य पद है, वहां कौन से हो सकते हैं कौन से नहीं, इसका हमको देखना है। उसमें भी मारणातिक उपपाद नहीं होते। छठे गुणस्थान में वो तेजस वाला समझात होगा।
एक प्रश्न है।
हाँ, चौथे गुणस्थानवर्ती समय दृष्टि जीव है,
उसको
वेदना समझात होगा कि नहीं होगा, ये पूछ रहे हैं। होगा, कषाय भी होगा। नहीं, हमने तो सर्वार्थ सिद्धि देवों की उसमें देखा था ना, उनके भी वेदना और कषाय समुद्रत कौन से शुक्ल लेसा वाले हैं, और वहाँ क्या उनको वेदना क्या होते होंगे। यथा संभव होते हैं उनके, नहीं कभी भी हो सकता है, वेदना के साथ मारणांतिक भी हो सकता है। इसलिए वो मारणांतिक की एरिया बढ़ाने के लिए वेदना क्या किया है, वेदना का समुद्रात हो रहा है उसी समय मारणांतिक किया, तो वो बड़ी हुई अवगाहना के साथ मारणांतिक होगी। हाँ, आपका क्या प्रश्न है? ऊपर के गुणस्थानों में मारणांतिक समुद्रात होगा कि नहीं, आपका प्रश्न है? बिल्कुल हो सकता है। हमने देखा था ना, जितने मरण करते हैं उसमें से बहुभाग तो मारणांतिक करते ही है। पांचवे में मारणांतिक है, मरण नहीं है, उपपाद नहीं है, उपपाद समुद्रत नहीं, मारणांतिक है। मैंने पांचवे में मारणांतिक की बात उठाई थी क्या? नहीं, मारणांतिक है, मारणांतिक तो पांचवे भी है, छठे में भी है, सब जगह। देखो, प्रमत्त गुणस्थान में आहारक समुद्रात पद नहीं है, वो तो पढ़ा हमने। शेष गुणस्थानों में यथासंभव पद जानकर कहना, ये जानकर की बात आई थी अपनी। अब 35 नंबर का सूत्र, ओरालिय मिस्स काय योगीसु मिच्छा दिट्ठी ओघम। औदारिक मिश्र की बात है, औदारिक मिश्र काय योगियों में मिथ्या दृष्टि जीव ओघ के समान सर्वलोक में रहते हैं। औदारिक मिश्र काय योग है, एक तो मनुष्य तिरिंचों में जन्म लेने वालों के होता है शरीर पर्याप्ति काल तक, और जो लब्धि अपर्याप्त जीव है उनके तो वही काय योग होता है थ्रू आउट लाइफ, तो वो तो पूरे लोक में है, तो पूरे लोक में औदारिक मिश्र काय योगी है, और उनकी संख्या भी अनंतों में है, क्योंकि निगोद वाले भी है ना सारे, और सूक्ष्म सब जगह पड़े हैं, सूक्ष्म निगोद के अन्य भी सूक्ष्म जीव सर्वत्र है, और जन्म लेते तो वहाँ औदारिक मिश्र तो उनको शुरुआत में होता ही है पूरा लोक में, तो पूरा लोक में स्वस्थान भी है, पूरा लोक में उनका वेदना भी है, कषाय भी है, मारणांतिक भी है, उपपाद भी है, नहीं? अभी इसको अर्थ हम देखते हैं। पेज नंबर 106 पर आते हैं। शंका, मिथ्या दृष्टियों के बहुत होने पर भी। यहां सूत्र में एक वचन का निर्देश कैसे किया है, वहां लिखा है ना मिथ्या दृष्टि ओगम, तो कहते यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि संख्या की अपेक्षा बहुत से भी जीवों के जाति की विवक्षा से एकत्व पाया जाता है। जैसे हमने जाति अपेक्षा छह द्रव्य है, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकार, हमने एक एक ही नाम, तो कहते जाति एक होने से उनको सबको एक वचन से हम पुकार सकते, बोल सकते, अथवा मिच्छा इट्ठीस पद बहुवचन का ही निर्देश समझना चाहिए, या बहुवचन के अर्थ में वो है ऐसा भी समझो। तो शंकाकार पूछता है तो फिर यहाँ बहुवचन की विभक्ति क्यों नहीं पाई जाती, यानी बहुवचन के जो व्याकरण के नियम है उसके प्रमाण क्यों नहीं बताए। उसका समाधान, आदि मध्य और अंत के वर्ण और स्वर का लोप हो जाता है, इस प्राकृत व्याकरण के सूत्रानुसार बहुवचन की विभक्ति का लोप हो गया। जैसे संस्कृत के व्याकरण के नियम प्राकृत के अलग है, कहीं कहीं हम कोई शब्द है उसमें अ जोड़ देते हैं तो आ हो जाता है, तो यहाँ कहीं कहीं वो प्राकृत में नहीं भी होगा, वो स्वर का लोप शुरुआत में भी हो सकता है, लास्ट में भी और मध्य में भी कहीं पर हो सकता है, तो उसके नियम अलग है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने तो केवल बताया कि पूरे लोक में है, अब उसमें उसके पद बताएंगे विशिष्ट। स्वस्थान स्वस्थान, अभी विहारवत लिया के यहाँ पर, हाँ हाँ हाँ, वर्ण और स्वर, वर्ण और स्वर का अर्थ समझते हैं, वर्ण ने रंग,
हाँ
हाँ, वो बारह कड़िया थे ना, कका की जी, कख ग ग, वो वर्ण होते हैं और स्वर ने अ आ ई, वो स्वर होते हैं। अच्छा कि आपने पूछा और बताया, नहीं तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं ना। व्यंजन, व्यंजन शब्द आता है कहीं पे, व्यंजन का क्या अर्थ होता है, खाने के पदार्थ को भी व्यंजन कहते हैं, व्यंजन इसमें इसको भी कहते हैं, शब्दों को यानी वो लेटर्स को भी व्यंजन कहते हैं। तो हाँ, सब्जी को आता है ना व्यंजन और खार, उसका भेद नहीं समझता है मिथ्या दृष्टि, वो तो इससे आता है ना, हाथी को कुछ खिलाओ। अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, वो व्यंजन, ऐसा कहते हैं आज बहुत स्वादिष्ट व्यंजन, यानी अलग अलग पदार्थों को भी व्यंजन कहते हैं, जो कोई मिठाइयाँ वगैरह बनाए उसको भी कहेंगे, सब्जी को भी कहेंगे। ये समयसर में आता है ना, व्यंजन का और स्वाद का, एक किसका स्वाद लेता है, व्यंजन का लेता है कि नमक मिर्ची का लेता है, सब्जी खाते वाले अच्छी बनी जब कहते हो तो किसके स्वाद अच्छा लगता है, नमक मिर्ची का, मसाले का, सब्जी का। राख का स्वाद अच्छा, सबसे अच्छा। वो मसाले के प्रति जो राग है उसका स्वाद। चलो, वो खाते समय याद होना चाहिए, बाद में याद आता है। हाँ देखो, ये दो समाधान के बाद वाली बात, स्वस्थान स्वस्थान, देखो अभी क्या क्या नहीं लिया, विहार व्रत को छोड़ दिया है, क्योंकि औदारिक मिश्र में कौन कौन विहार करेंगे, देव को औदारिक वो तो वैकृत मिश्र में भी वही विहार नहीं करते, मिश्र ने अभी शरीर पर्याप्ति भी पूरी नहीं हुई है, विहार काहे का करेंगे, विहार गति का उदय तो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर हो शुरू होगा, ख्याल में, और वो पर्याप्त होने पर विहार हो जाएगा उनका, बाकी लब्धियां पर्याप्त होंगे तो विहार है ही नहीं है, उनको औदारिक मिश्र नहीं होता। विहार व्रत को छोड़ दिया है, ख्याल में, स्वस्थान स्वस्थान को लिया, फिर वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, अभी यहां विक्रिया को भी नहीं लिया है, उपपाद पदगत औदारिक मिश्र का योगी मिथ्या दृष्टि जीव सर्वलोक में रहते हैं, ये तो नेचुरल है ना, ये सारे पद तो पूरे में, क्योंकि वो जीव ही पूरे लोक में, तो उनके ये समुद्घात भी पूरे लोक में। यहाँ पर देखो क्या लिखा, विहार व स्वस्थान और वैकृत समुद्घात ये दो पद नहीं होते, क्योंकि औदारिक मिश्र का योग के साथ इन दोनों पदों का विरोध है। क्यों विरोध है तो अभी हमने आपको बताया, अभी शरीर पर्याप्ति भी पूरी नहीं हुई है, तो यहाँ ना वो कर्मों का उदय है और ना ही वैसे जीव की वो शरीर पूर्ण हुआ है। फिर शंका, औदारिक मिश्र का योग का वैकृत समुदात आदि पदों के साथ भेद पाया जाता है, अतएव सूत्र में ओग पद का निर्देश घटित नहीं होता है। क्या कहने चाहते हैं? सूत्र में बताया ओग के समान, यहाँ लिखा ना ओग के समान सर्वलोक में, तो ओग में तो ओग में क्या है, वो गुणस्थानों की बात चल रही है। मिथ्या दृष्टि जो पूरे लोक में रहते हैं, ये ओग की प्ररूपना थी। तो ओग में तो वैकृत समुदाय वाले भी बताए थे ओग के समान कहते हैं, तो ओग के समान जो वैक्रियकों का जितना क्षेत्र होगा वो मिथ्या दृष्टि में घटित होना चाहिए। यहाँ तो उसको लिया ही नहीं है, तो ओग के समान ऐसा क्यों कहा कि? ये इनका प्रश्न है। प्रश्न क्या समझ में? ओग में भले उनका क्षेत्र वो पूरा लोक नहीं है, परंतु ओग में जो उनका क्षेत्र बताया है, तो ओग में तो मिथ्या दृष्टियों के वैकृत समुदाय तो पाया जाता है। यह हमारी कंडीशन औदारिक मिश्र का योग वाले मिथ्या दृष्टि है, तो फिर ओग के समान क्यों कह दिया? ये शंकाकार का प्रश्न है। इसलिए ओग ये पद नहीं डालना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान के साथ औदारिक मिश्र का योग में होने वाले स्वस्थान आदि पदों की प्ररूपणा ओघ प्ररूपणा के तुल्य है, इसलिए ओघपना विरोध को प्राप्त नहीं होता। यानी किसी एक बात में वो जो कुछ डिफरेंस है वो इतनी विशेषताएं कह के बता देते उसके स्पष्टीकरण में, परंतु ये ओघ पद डाला ये कोई गलत बात नहीं है। आगे देखते हैं, 36 नंबर का सूत्र अपने को पढ़ना है। शासन सम्मादिट्ठी, अभी औदारिक मिश्र की बात चल रही है ना, औदारिक मिश्र वालों के गुणस्थान कौन से? एक तो पहला शासादन के साथ कहीं जन्म लिया तो दूसरा भी गुणस्थान, चौथे के साथ मनुष्य तीरेंच कहीं पर यानी मनुष्य तीरेंच में जन्म लिया तो चौथा गुणस्थान भी होता है, और एक तो तेरवा होता है। तो कहते हैं शासादन सम्मादिट्ठी असंजद सम्मादिट्ठी सजोगी केवली केवड़ी खेते लोगस्य असंख्य यदि भागे। ये कायोग कौन सा चल रहा है? मिश्र, औदारिक मिश्र। अब यहाँ नीचे हिंदी में देखते हैं उसको अर्थ। औदारिक मिश्र कायोगी शासादन समय दृष्टि असंयत समय दृष्टि और सयोग केवली कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यातवे भाग में रहते हैं। क्योंकि दूसरे गुणस्थान वाले शासादन कौन है? तो जो कोई संगी पंचेंद्रिय जीव है, कोई भी कहा इन्हें चारों गति का कोई भी हो सकता है, मरण के जस्ट पहले प्रथमोक्षम सम्यक तो प्राप्त किया और उसमें वो गिरकर शासादन में आ गए। अब शासादन के साथ मरकर मनुष्य में आ गए, या शासादन के साथ मरकर तिरंच में भी जा सकते, तो उनके औदारिक मिश्र का योग चल रहा है। उस समय वो शासादन के साथ आए हैं और उसी में वो मिथ्यात्व में चले जाते, यानी शासादन के साथ औदारिक मिश्र है, संगी पंचेंद्रिय आए और संगी पंचेंद्रिय में ही जन्म लेंगे, तो उनका क्षेत्र कितना होगा? लोक का संख्या का, समझ में आई बात? अब आगे देखते हैं। इस सूत्र में पूर्व सूत्र से औदारिक मिश्र का योग इस पद की अनुवृत्ति होती है, अनुवृत्ति यानी कंटिन्यूटी चल रही है। हर सूत्र में उसको देखने की जरूरत नहीं है, पहले सूत्र का जो योग है वही बात यहाँ पर चालू है अभी, इसलिए सूत्र के अर्थ का इस प्रकार संबंध होता है। औदारिक मिश्र का योगियों में शासादन समय दृष्टि असंयत समय दृष्टि और सयोग केवली कितने क्षेत्र में रहते हैं? तो कहते स्वस्थान स्वस्थान वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घात गत विहार वत छोड़ा, क्योंकि औदारिक मिश्र में विहार नहीं होता है और विक्रिया भी नहीं होती है, ये तीन ये लिए। शासादन समय दृष्टि जीव सामान्य लोक आदि चार लोगों के असंख्यातवे भाग में और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। औदारिक मिश्र है तो तिरंचों में उत्पन्न होने वाले भी लेना है, देव से और नरक से शासादन के साथ तिरंचों में बहुत बड़ी राशि उत्पन्न होगी, उसका क्षेत्र भी बड़ा होगा, फिर भी वो लोक तिरेक लोक का भी असंख्यात्व भाग है। अभी देंगे ना, पहले तो तीन लिए, उनका तो स्वस्थान जैसा वो है, क्योंकि औदारिक मिश्र का योग में पल्योपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण सासाधन समय दृष्टियों की राशि का पाया जाना संभव है, यानी एट ए टाइम इतने जीव उसमें हो सकते हैं औदारिक मिश्र का योग में। यहाँ पर शेष विहारवत स्वस्थान आदि पद नहीं होते, क्योंकि सासाधन गुणस्थान के साथ उन पदों का यहाँ पर विरोध है। आदि में किस किस को विक्रिया भी नहीं होती है, उपपाद होगा कि नहीं होगा, उपपाद वो दंड वाला नहीं होगा। अभी तो हमने देखा था ना, देखो 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 हमने क्या देखा, यहाँ पर औदारिक का योग नहीं होता ऐसा देखा था, पर औदारिक मिश्र में जो उपवाद नहीं है। हाँ हाँ देखो देखो क्या कहते हैं, उपपाद कैसे लेना है, उपपाद यानी जन्म तो हो रहा है, जन्म हो रहा है पर मरकर आए हैं, तो जब उपपाद दंड हम कैलकुलेट करते हैं तब उनका कारमान का योग है, और जहां ऑलरेडी वहां पहुंच गए। औदारिक मिश्र कब शुरू हुआ, विग्रह गति में तो नहीं, पहुंचने पर औदारिक मिश्र का योग शुरू हुआ, तभी औदारिक मिश्र का योग शुरू होने पर और कैसा उपपाद, फिर जब औदारिक मिश्र शुरू हुआ तब उसका और फिर दोबारा उपपाद होगा क्या, औदारिक मिश्र के साथ वाला जो सासाधन है यानी ऑलरेडी उसका उपपाद हो चुका है, अब उसका दूसरा उपपाद क्या होगा, उपपाद दंड जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तब वो औदारिक मिश्र का योगी नहीं था, कारमान का योग में उसको ले सकते, मात्र सासाधन था तो हमने उसमें उपपाद लिया। औदारिक मिश्र कब शुरू हुआ, वहां वो जन्म के स्थान पर अभी पहुंच गया है, वो उसकी सारी वो पर्याप्तियां चालू हो गई, अब इसके बाद कैसा उपपाद कहेंगे, वो नहीं होता, क्योंकि पहले से औदारिक मिश्र वाले का उपपाद हो तो भी ये संभव है, ख्याल में है ना बात, उपपाद और वो औदारिक मिश्र मान लेते रुजु गति से एक समय में शुरू हुआ तो उसका दोबारा कहां उपपाद होने वाला है, यानी उसको उपपाद नहीं कहेंगे। देखो फिर से, इसलिए यहां क्या कहा, आदि में अन्य सब पदों नहीं होते, क्योंकि सासाधन गुणस्थान के साथ उन पदों का यहां पर विरोध है। अभी मेरा प्रश्न है, सुनी बहन सुनना, आप नए लोगों को विचार करना है, कोई जीव सासाधन गुणस्थान में है तो सासाधन गुणस्थान में मारणांतिक संभव है कि नहीं, ऑर्डिनरी मारणांतिक, औदारिक मिश्र में, औदारिक मिश्र तो जन्मा तभी हुआ, ख्याल में ना, मारणांतिक कर रहा था कोई, देवनारकी करेंगे तो वैकृत कायोग में हो गए या मनोयोग में हो गए या वचन योग में, मनुष्य दीर्घ मारणांतिक के काल में, क्योंकि वो प्रथम ऑप्शन के से अभी अभी आया है, उनका औदारिक कायोग होगा या मनोयोग या वचन योग कुछ भी हो सकता है, उस काल में उनका सासाधन है और उस सभी उन्होंने मारणांतिक किया, मारणांतिक के काल में कभी भी औदारिक मिश्र नहीं हो सकता। हाँ वो औदारिक मिश्र में मारणांतिक, हम दूसरे चौथे गुणस्थान की बात कर रहे हैं, एकेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त मारणांतिक करेंगे तो औदारिक मिश्र में ही करेंगे, कुछ समझ में आती क्या बात नहीं आती, क्योंकि उस अवस्था में मरने वाले है वो मारणांतिक करेंगे, लब्धि अपर्याप्त को उनकी आयु जो है वो बहुत अल्प है, वो औदारिक मिश्र ही होता है, मरण के समय भी वही है, और वो उसके पूर्व मारणांतिक करेंगे तो भी औदारिक मिश्र में करेंगे, वहां तो मारणांतिक लेते हैं, उपवास सब कुछ लेते हैं उसमें, यहाँ उसको नहीं लेते, ख्याल में है बस। तो आदि पद नहीं होते, क्योंकि साथ उन स्थान के साथ उन पदों का यहाँ पर विरोध है। क्यों विरोध है वो हमको सोचना है। बराबर। अब ये दूसरे गुणस्थान की बात हुई, अभी चौथे की बात करेंगे। स्वस्थान वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घात गत औदारिक मिश्र का योगी असंय सम्य दृष्टि जीव सामान्य लोक आदि चार लोगों के असंख्यात विभाग में। और मनुष्य क्षेत्र में नहीं, मनुष्य क्षेत्र के संख्यातवे भाग में रहते हैं, क्योंकि वे संख्यात राशि प्रमाण होते हैं। ये संख्यात राशि क्यों कहा? औदारिक मिश्र के साथ सम्य दर्शन के साथ जो औदारिक मिश्र में आए हैं। हाँ, क्यों शायक होनी चाहिए जरूरी है? अरे नारकी और देव आएंगे कि मनुष्य में? देव समय दृष्टि, नारकी समय दृष्टि, तो मनुष्य में आएंगे, संख्यात आएंगे। हाँ, संख्यात होगा, पर संख्यात है। और तीर्यंचों में कब होगा? मनुष्य शायक लेके जाएंगे, उनकी संख्या गिनी चुनी कुछ होगी। उनको देव और नारकी से अधिक जीव तो आ सकते हैं ना, परंतु है तो संख्यात है, क्योंकि एक समय में इतने उत्पन्न होने चाहिए। देखो क्या कहते हैं, क्योंकि वे संख्यात राशि प्रमाण होते हैं, और औदारिक मिश्र में उनकी अवगाहना भी कितनी छोटी होगी, क्योंकि वो तो अभी वहां एक अंतर्मूर्त में जो जन्म के समय से लेकर उनका जो है वो अवगाहना बहुत छोटी होगी। शंका, औदारिक मिश्र का योगी सांसाधन सम्य दृष्टि और असंयत सम्य दृष्टि जीवों के उपपाद पद क्यों नहीं कहा? यह प्रश्न है, हमने चर्चा अपने से की थी। उसका समाधान पेज नंबर 107 पर, नीचे से जो दूसरा पैराग्राफ है, शंका का समाधान। नहीं, क्योंकि औदारिक मिश्र का योग में स्थित सांसाधन और असंयत सम्य दृष्टि जीवों का स्थित है, उसमें स्थित हो गए ना, ऑलरेडी वहां पहुंच गए जन्म के स्थान पर, और उनके वो पर्याप्ति अचल हो गए। पुनः औदारिक मिश्र कायोगियों में उपपात नहीं होता है। हाँ, मरकर अभी जन्म लेना है, यानी अकेला अगर हम सासाधन में उपपात, हाँ होता है सासाधन के साथ कहीं जन्मा, परंतु यहाँ औदारिक मिश्र और सासाधन शुरू हो गए हैं, उसका अर्थ वो पहुंच गया वहां, उसकी पर्याप्ति चालू हो गई। अब फिर दोबारा वहां से उपपात कहाँ होगा उसका? समझ में आती है बस? अब तो वो सासाधन से औदारिक मिश्र के रहते हुए जाएगा मिथ्यात्व में, कोई सम्यक्त के साथ आया है तो वो सम्यक्त तो बना रहेगा, औदारिक मिश्र से औदारिक का योग्य हो जाएगा। मैं इसका आवाज नहीं आ रहा,
कोई जीव,
मैं रिपीट करूंगी, आप पूछना। हाँ,
साधन में मरकर मनुष्य में आया मानो, तो वो औदारिक मिश्र के साथ सासाधन में रहेगा कि नहीं?
हाँ, आपका ये प्रश्न है, कोई देव मरकर मनुष्य में आता है सासाधन के साथ, तो वो औदारिक मिश्र के साथ सासाधन में है, बरोबर है, रह सकता है। उपपाद जब औदारिक मिश्र होने के बाद फिर दोबारा उपपाद नहीं कहेंगे, औदारिक मिश्र ऑलरेडी होना चाहिए, बाद में उसके क्या क्या हो सकते हैं जब वो औदारिक नहीं, पर उपपाद हम विग्रह मोड वाले से आने वाले, उसका उपपाद तो हम कारमान का योग में कहते हैं। जब औदारिक मिश्र शुरू हुआ तो शरीर के वो पर्याप्ति वगैरह शुरू हुए, अब औदारिक मिश्र वाला सासाधन कब कहेंगे? जब वहां ऑलरेडी वो शरीर धारण करना शुरू किया, अब उसके उपपाद कहां से हुआ? ख्याल में आती है ना बात? औदारिक मिश्र शुरू हुआ है और अभी से उसका सासाधन वाला है। अब औदारिक मिश्र और सासाधन जब एस्टेब्लिश हो गए, अब जाके कहां उपपाद होने वाला? वो हो चुका उस समय। हाँ, पर तभी पहले वो औदारिक मिश्र में नहीं था ना, पर औदारिक मिश्र होने के बाद अगर उपपाद करता है तो की बात है। उपपाद पद जो क्षेत्र में देखते हैं तब उसको ऐसा होना चाहिए औदारिक काय औदारिक मिश्र योग अवस्था में उसने यो उपपाद किया क्या ऐसा लेना है। औदारिक मिश्र कब हुआ? औदारिक मिश्र हो गया तब औदारिक मिश्र कब हो कहेंगे जब हो चुका उसका
पर वहाँ पे उपपद दे सकते हैं ना।
बाद में उपपद कहाँ होगा?
नहीं बाद में नहीं पर जो रुजुगति आया
है हम जब उसको अभी योग का नाम मत दो तो हम उसको उसको उपपद कहेंगे। आप उसको योग वाला नाम मत दो योग के कंसीडर किए बिना।
नहीं नहीं देव में उपपद है मनुष्य में उत्पन्न हुआ पहले समय में रुजुगति आया औदारिक मिश्र का योग शुरू हुआ और उपपद योग
उपपाद हो गया पर औदारिक मिश्र काय योगी का उपपाद नहीं हुआ है। औदारिक मिश्र शुरू हुआ उसी समय उसको उपपाद हुआ जीव का उपपाद हुआ है। सासादन वाले का उपपाद कहो तो कहो औदारिक मिश्र वाले का उपपाद मत कहो। औदारिक मिश्र वाला ऑलरेडी है कब है जिस समय उसने शुरू किया अब उसका उपपाद होगा क्या लेंगे तो अपन रुजुगति में कहा उसको पहले तो मरण के समय जो योग था वो कहेंगे हम कौन सा उपपाद हुआ किसका उपपाद हुआ वैकृत वाले का उपपाद हुआ कहेंगे उस मनोयोगी का उपपाद हुआ परंतु उपपाद होते ही उसका औदारिक मिश्र शुरू हुआ। एक तो उसको उपपाद क्योंकि उस का योगी वाले की मारणा कब शुरू हुई जब उसने ऑलरेडी जन्म लिया तब अब जाके उसका उपपाद कैसे होगा। मारणांतिक भी दूसरे चौथे वाले को उस समय नहीं है वो लब्धि अपर्याप्त वाले मारणांतिक करेंगे उसकी बात हो सकती है उसको तो हमने मिथ्या दृष्टि में ले लिया है। हाँ जहाँ औदारिक मिश्र में मरण होगा वहाँ मारणांतिक होगा वो तो पहले गुणस्थान में हम ले चुके हैं। सासादन के साथ औदारिक मिश्र वाले के न मारणांतिक होगा न उपपाद होगा मिथ्या दृष्टि के होगा वहां हमने लिया था। अभी आगे बढ़ेंगे देखो। हाँ फिर से प्रश्न पूछना। हाँ देव की बात चल रही है मैं आपकी रिपीट करें। हाँ देव सासादन में मरा एक मोड़ लेके आया है। हाँ जब मरा तभी से आयु शुरू हुई। हाँ उपपाद तो उसको पहले मोड़ तक पहुंचा तभी कहेंगे उपपाद। वो मर गया मरने का समय उसका वो देव का था नेक्स्ट समय उसका उपपाद का था। हाँ मारना इन्हें वक्र से जाने वाले का उपपाद लिया आपने मोड़ वाली बात बताई। हाँ कंपेयर करेंगे एक ही समय जो पहुंचा हाँ। उसका उपपाद कब कहेंगे जो औदारिक मिश्र शुरू हुआ तब पहले समय में। हाँ दोनों एक साथ शुरू हुआ यानी औदारिक मिश्र के साथ उपपाद हुआ है उसका पर औदारिक मिश्र वाले का उपपाद नहीं कहेंगे वो यानी देखो औदारिक मिश्र और उपपाद दोनों एक समय में घटित हुआ पर अभी वो औदारिक मिश्र वाला फिर और औदारिक मिश्र में जाएगा क्या उपपाद करके वही तो बता रहे यही तो बात कह रहे। हाँ, यानी उसको मरकर फिर उस समय उसका मरण ही नहीं है, तो फिर उसको उपवाद ऑलरेडी हो चुका है उसका, तभी उसका औदारिक मिश्र शुरू हुआ। औदारिक मिश्र जब शुरू हुआ उसके बाद उसने कहा हम उपवाद किया, उसको तो वही तो संस्थान में आ गए ना, वो उसका उपवाद का अलग से कैसे गिनाएंगे। अभी यहाँ क्या कहते देखते हैं, अथवा अथवा करके देखो समाधान कहाँ पूरा पड़ा है। औदारिक मिश्र का योग में स्थित सासाधन और असंय, नीचे से दूसरा पैराग्राफ, समय दृष्टि ज्यों का पुनः लिखा ना, औदारिक मिश्र का योग में उपपाद नहीं होता, एक बात, अथवा उपपाद होता ऐसा कह सकते हैं, जो आपकी बात है। हाँ, क्योंकि सासाधन और असंय समय दृष्टि गुणस्थान के साथ अनुक्रम से ग्रहण किए गए नए भव संबंधी शरीर के प्रथम समय में उसका सद्भाव पाया जाता है, यानी अभी उसको वो स्वस्थान में ही गिनेंगे, उसको
उपपाद में नहीं गिनेंगे,
अभी वही उसका उपपाद है, वही उसका स्वस्थान हो गया।
उपपाद में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं,
हाँ, वो अथवा एक एक अपेक्षा से, यानी एक नए से उसको हम उपपाद कहेंगे, पर उसकी एरिया वही है स्वस्थान वाली, यानी वो औदारिक मिश्र वाला उसने उपपाद नहीं किया है, उसका उपवाद होकर एट ए टाइम दोनों चालू हो गए। हाँ, परंतु उसमें वो एरिया अगर कैलकुलेट करनी है तो वो तो उसमें कोई अलग से, यानी औदारिक मिश्र शुरू हुआ और फिर उसने उपवाद किया ऐसा तो नहीं है। हाँ ना, एट ए टाइम है, जैसे सासाधन ऑलरेडी था, अब वो सासाधन समय दृष्टि मरकर आया है, ऐसा नहीं होता कि वहाँ सम्यक दृष्टि और यहाँ नीचे आकर वो सासाधन हुआ, ऐसा तो नहीं होता। हाँ, सासाधन वाला है वो मिथ्यात्व में चला जा सकता है, तो हम कहेंगे सासाधन वाला मिथ्यात्व में गया। ऐसे यहाँ सासाधन है और औदारिक मिश्र है, वो कब कहेंगे, पहले समय में, पहले ऑर्डिनरी सासाधन तो कह ही सकते, क्योंकि सासाधन उसका देव में ही चालू हो गया था, ऑर्डिनरी सासाधन के साथ उसका उपपाद हुआ, ये कहना तो आसान है, वो तो कहीं पर भी विग्रह गति में भी कह सकते उसका वो उपपाद का समय है। अगर पर औदारिक मिश्र वाली बात जो है, वो औदारिक मिश्र के साथ उसका उपपाद कहाँ समझेंगे हम, पहला समय, परंतु उसके पूर्व में उसका औदारिक मिश्र नहीं था। ये तो हम कर्णन युग में सर्वत्र यही है, जो ऑलरेडी उसमें है उसके जो पद हो गए बाद में उसको कंसिडर करते हैं। इसलिए अथवा कह के जो आपके प्रश्न है उसका भी उत्तर यहाँ आ गया। हाँ, आपके फेवर में, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि पहले पूछा था, क्योंकि उसका पद नहीं होता ऐसा पहले वो बता चुके थे। अब कहते दूसरी बात यह है कि स्वस्थान स्वस्थान वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात केवली समुद्घात और उपपाद, इन पांच अवस्थाओं के अतिरिक्त औदारिक मिश्र का योगी जीवों का अभाव है। यानी औदारिक मिश्र का योगी उपपाद लिया गया, ये तो इन जनरल बात है, सासाधन की बात नहीं कर रहे। औदारिक मिश्र का योगी मरकर औदारिक मिश्र में उत्पन्न होता है लब्धि अपर्याप्त, उसमें उपपाद हो सकते हैं, क्योंकि ये सासाधन की बात नहीं है, इसको केवली को भी लिया यहाँ पर, यानी सामान्य से सभी गुणस्थानों की बात है। उपपाद जो स्वीकार है वो मिथ्या दृष्टि को स्वीकार है, क्योंकि वो औदारिक मिश्र में मरकर औदारिक मिश्र के साथ उसका उपपाद हुआ है, वो मिथ्यात्व में तो मिथ्या दृष्टि जीव को तो होता है, क्योंकि लब्धि अपर्याप्त मरकर लब्धि अपर्याप्त में उत्पन्न हुआ है, उसको तो ले सकते हैं। विशेष यहाँ पर प्रथम तो औदारिक मिश्र का योगियों का औदारिक मिश्र का योगियों में उपपाद का अभाव बतला गया है, पुनः अथवा करके औदारिक मिश्र का योगियों में उपपाद का सद्भाव भी बतला दिया है। ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध सी प्रतीत होती है। ये जो नए का कथन का भेद यहाँ ले लिया, किंतु यथार्थता उनमें कोई विरोध नहीं है, भेद केवल कथन शैली का है। जिसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। प्रथम जो यानी पहला जो कथन है उसकी बात बता रहे, औदारिक मिश्र का योगियों का औदारिक मिश्र का योगियों में उपपाद का अभाव बतलाया है। उसका अभिप्राय यह है कि औदारिक मिश्र का योग तिर्यंच और मनुष्यों की अपर्याप्त दशा में ही होता है और अपर्याप्त दशा को प्राप्त सासाधन समय दृष्टि या असंयत समय दृष्टि जीव मरण को प्राप्त नहीं होता, यानी वो लब्धि अपर्याप्त नहीं है ना, तो इसमें आता है तो अभी वो सासाधन वाला मिथ्या तो में चला जाएगा और समय दृष्टि का समय दर्शन बना रहेगा, जिससे कि वह पुनः औदारिक मिश्र का योगी सासाधन समय दृष्टि या असंयत समय दृष्टि तिर्यंचा मनुष्यों में उत्पन्न हो सके। ये अपेक्षा ख्याल में आई बात, जो ऑलरेडी औदारिक मिश्र का योगी है अभी उसका मरण वहां नहीं है, किसमें? सासाधन और चौथे में। मिथ्या दृष्टि के तो होता ही, वो तो हमने बता दिया, अतएव उसमें सासाधन समय दृष्टि और असंयत समय दृष्टि औदारिक मिश्र का योगी जीवों के उपपाद पद का अभाव बतलाना सर्वथा युक्ति संगत ही है। पुनः अथवा करके जो औदारिक मिश्र का योगियों में उनके उपपाद का सद्भाव बतला गया है उसका अभिप्राय यह है कि पूर्व भव के शरीर को छोड़कर उत्तर भव के प्रथम समय में प्रवर्तन को उपपाद कहा गया है। वह उपपाद उत्पन्न होने के प्रथम समय में ही होता है, अतएव यदि कोई पांच मनोयोगी पांच वचन योगी और औदारिक काय योगी सासाधन समय दृष्टि या असंयत समय दृष्टि जीव मरकर मनुष्य तिर्यंचों में, यहाँ एक कॉमा लगाना, अर्ध विराम लगाना, कोई भी कुछ भी लगाना, कौन मरकर आने वाले हैं? मनोयोगी वचन योगी या औदारिक काय योगी दूसरे चौथे गुणस्थान वाले, या पांच मनोयोगी पांच वचन योगी तथा वैक्रिय काय योगी जीव यानी देव नरक से मरकर मनुष्यों में रुजुगति से उत्पन्न होता है। यहाँ रुजुगति आवश्यक है क्योंकि उपपाद घटित करना है, तो उसकी उत्पत्ति के प्रथम समय में औदारिक मिश्र कायोग का सद्भाव पाया जाता है। इसलिए कहा गया है कि सासाधन समय दृष्टि या असंयत समय दृष्टि गुणस्थान के साथ रुजुगति से धारण किए गए आगामी भव संबंधी शरीर के प्रथम समय में औदारिक मिश्र कायोगियों के उपपाद का सद्भाव पाया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है, उक्त दोनों कथनों में कोई पारस्परिक विरोध नहीं है, भेद केवल कथन शैली व विवक्षा का ही है। यानी औदारिक मिश्र वाला औदारिक मिश्र में नहीं उत्पन्न होता, यह पहला कथन। अब यहाँ औदारिक मिश्र के साथ यानी वो रुजुगति से आया हुआ है, परंतु वो रुजुगति से आया है तो उसका स्वस्थान हो गया, वो भले उसको उपवाद आप नाम क्यों न दे, उसका क्षेत्र तो बढ़ने वाला नहीं है। ख्याल में है ना? दोनों गुणस्थान लिए, तिर्यंचों में कौन होगा? क्या तिर्यंचों में कौन जाएगा वैक्रिक का योग के मरकर? तिर्यंच में सासाधन की बात नहीं, दो गुणस्थान लिए,
सासाधन की बात,
सासाधन में जा सकते हैं। सासाधन में कहाँ मनाई है, वो चारों गति से आ सकते हैं। यहाँ दो गुणस्थानों को इकट्ठा लिया है ना। नहीं नहीं, सासाधन के साथ छठे नरक का नारकी भी तिर्यंचों में जा सकता
है,
वो तो दोनों गुणस्थान एक साथ लिए इसलिए मनुष्य में लिखा। ये तो सब विशेषार्थ में लिया है ना, विशेषार्थ में बताया, वहां पर भी तिर्यंचों में तो उत्पन्न हो सकता है। हाँ, अभी आगे देखते हैं। कपाड़ समुद्घात गत औदारिक मिश्र का योगी। अभी दूसरे चौथे गुणस्थान की बात हो गई, अभी कपाट समुद्रत वाली बात है। संयोग केवली भगवान, सामान्य लोक आदि तीन लोगों के असंख्यातवे भाग में, क्योंकि ऐसे कपाट जैसे आड़े फैले हैं, उसका अर्थ क्या है, ऐसे हाइट में तो 14 राज्य, और ऐसे मान लेते उत्तर दक्षिण तो 7 राज्य फैले, यानी जगत पत्र तो वहाँ 2 गुना जगत पत्र हुआ, और ऐसे कितना है, अंगुल प्रमाण है उनकी जितने एरिया उसकी जो कैलकुलेट की थी उसकी, तो वो कितना है लोक का असंख्यातवा भाग होगा, क्योंकि जगत पत्र गुना कुछ अंगुल, तो लोक का असंख्यातवा भाग, ऊर्ध्व लोक का असंख्यातवा भाग, अधोलोक का असंख्यातवा भाग, तिर्यक लोक का संख्यात्वा भाग कहा, और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। ये ख्याल में आई बस, अब 37 नंबर का सूत्र 37 वेयुवीय काय जोगीसु, दे औदारिक औदारिक मिश्र हो गया अपना, अब वैकृत की बात चलेगी। वेयुवीय काय जोगीसु मिच्छा इट्ठी पहुड़ी जाव असंजत सम्मा इट्ठी केवड़ी खेते लोगस असंख्य जदि भागे। वैकृत का योग किसके होगा, देवनाथ के। गुणस्थान कौन कौन से हो गए, 1 से 4, बहुत अच्छा, हाँ यही बता रहे हैं। वैक्रिय का योगियों में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर असंयत समय दृष्टि गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, लोक के असंख्यातवे भाग में रहते हैं। अब इनमें कौन कौन से पद घटित होते हैं वो बताएंगे। इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, स्वस्थान स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात और वैक्रिक समुद्घात गत वैक्रिय कायोगी मिथ्यादृष्टि जीव। अभी अब एक पहला गुणस्थान पहले लिया, सामान्य लोक आदि तीन लोगों के असंख्यातवे भाग में, तिर्यक लोक के संख्यातवे भाग में, और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। क्योंकि यहाँ वैक्रिय कायोग के प्रकरण में ज्योतिष्क देवराशि की प्रधानता है। पहले हमने इसको देखा था, वो तो देवों के प्रकरण में 7 धनुष उनकी हाइट होती है, उसके प्रमाण से उनकी अवगाहना कैलकुलेट की थी और उनकी संख्या भी कैलकुलेट की थी हमने, वो जगत प्रत्र डिवाइडेड बाय वो प्रत्रांगुल वगैरह कुछ होता है, यानी उनकी राशि मल्टीप्लाइड बाय उनकी अवगाहना, ये उसका एरिया इतना कैलकुलेट हो जाता है। तीन लोग का असंख्यात्वा भाग, तिर्यक लोग का संख्यात्वा भाग और मनुष्य लोक से असंख्यात गुना। पेज नंबर 109 पर है हम, सेकंड लाइन, मानांतिक समुद्घात गत वैक्रिक कायोगी मिथ्या दृष्टि जी। अभी मिथ्या दृष्टि लेना है तो वैक्रिक कायोग में मानांतिक करने वाले, तो आपको बताना है कहां से कहां तक करेंगे, देव कहां तक करेंगे और नारकी कहां तक करेंगे, नारकी ऊपर आएंगे, क्योंकि सातवें पृथ्वी से 6 राज्यों तक आएंगे, और देव कहाँ तक जाएंगे, देव भी नीचे भी आ सकते हैं और कहाँ तक जा सकते हैं, मिथ्या दृष्टि की बात है। ईषद प्रागवार 8वीं पृथ्वी तक जा सकते हैं, यानी ऊपर कितनी एरिया ली, 7 राज्य और नीचे 6 राज्य और त्रसनाली में, परंतु वो पूरी त्रसनाली हम एरिया नहीं कैलकुलेट करते, वो तो स्पर्शन में होगी। यहाँ तो जितने जीव मारना थी, मरने वालों की संख्या निकालनी, उसमें मारणांतिक की संख्या निकालनी, उसमें फिर अवगाहना की बात होगी। अब यहाँ पढ़ेंगे, देखो तो मारणांतिक समुद्घात गत वैक्रिय कायोगी मिथ्यादृष्टि जीव सामान्य लोक आदि तीन लोगों के असंख्यात विभाग में, फिर भी वो लोग का असंख्यात विभाग होगा हो, और नरलोक तथा तिर्यक लोक इन दोनों लोगों से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं, यानी तिर्यक लोक से भी असंख्यात गुणा हो गया वो। यहाँ पर अपवर्तना स्वयं जान लेना चाहिए, क्योंकि वो तो मारणांतिक और उपपाद में तो राजयोग के उसके एक जो दंड होता है उसका लंबा होता है, इसलिए वो घटित हो जाता है। सासादन सम्य दृष्टि आदि शेष तीन गुण स्थानवर्ती वैक्रिय कायोगी जीवों के स्वस्थानादि पदों की क्षेत्र प्ररूपणा ओघ क्षेत्र प्ररूपणा के तुल्य है। यानी सासादन गुण स्थानों में जो ओघ से प्ररूपणा की थी वही यहाँ होगी। विशेषता क्या है? विशेषता केवल यह है कि इन सभी गुणस्थानों में उपपाद पद नहीं होता। क्यों नहीं होता? कौन कौन से गुणस्थानों में? सासादन में, यानी दूसरे में, तीसरे में और चौथे में उपपाद पद नहीं बताया। क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई जीव वैक्रिक कायोग में जन्म नहीं लेता है। मनुष्य तीर्यंचों से देवनारकी में जन्मने वाले के बहु के प्रथम शरीर ग्रहण के प्रथम समय में वैक्रिक मिश्र कायोग होगा। वैक्रिक कायोग के साथ कोई जन्म नहीं ले रहा है वहां पर। वैक्रिक कायोग में मारणांतिक तो करता है, वैक्रिक कायोग में किसी का भी उपपाद नहीं होता। जैसे हमने मनुष्य तीर्यंचों में औदारिक मिश्र में उपपाद देखा, वैसे देवों में नारकियों में वैक्रिक मिश्र में उपपाद होगा। इसलिए कहते कि उनमें उपपाद नहीं होता। कहाँ गया? हाँ, इन सभी हैं। अभी नया सूत्र 38 नंबर का। तो देखो अभी आहार काय जोगीसु आहार मिस्स काय जोगीसु 38 वेयुवे मिस्स रह गया। हाँ, वेयुवे मिस्स काय जोगीसु मिच्छा इट्ठी शासन सम्मा इट्ठी असंजत सम्मा इट्ठी केवड़ी खेते लोगस असंख्य जदि भागे। वैक्रिक मिश्र कायोग ने कहीं से मरकर देव या नारक में उत्पन्न हुआ है। हो सकता है पहले गुणस्थान में आया है, दूसरे के साथ उत्पन्न हुआ हो, या चौथे के साथ उत्पन्न हुआ। तीसरे में कोई मरता नहीं तो उसके साथ कोई जन्मता भी नहीं। तो तीन गुणस्थान है, वही बात अभी यहाँ नीचे पढ़ेंगे। वैक्रिक मिश्र कायोगियों में मिथ्या दृष्टि सासादन सम्य दृष्टि और असंयत सम्य दृष्टि गुणस्थानवर्ती जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? अभी उनका उत्पन्न होने की जगह लेना है। वहां पर वैक्रिक मिश्र शुरू हुआ है ऑलरेडी, लोक के असंख्यातवे भाग में रहते हैं, यानी एट ए टाइम उत्पन्न होने वाली राशि मल्टीप्लाइड बाय उनका वो तो अवगहना उनकी क्षेत्र रहे, वहां उत्पन्न होने का क्षेत्र लेना है। इस सूत्र का अर्थ कहते हैं स्वस्थान वेदना समुद्घात। देखो वैक्रिक मिश्र में कोई विहार नहीं करेगा और नहीं कोई वहां विक्रिया करेगा, तो स्वस्थान वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घात गत। वहां पर भी वेदना और कषाय है हो वैकृत मिश्र का योगी मिथ्या दृष्टि जीव सामान्य लोक आदि तीन लोगों के असंख्यात वे भाग में तिर्यक लोक के संख्यात वे भाग में और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ पर वो ज्योतिषों की वगैरह राशि प्रधान लेना, व्यंतर ज्योतिषी वो जिसमें ज्यादा है। स्वस्थान वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घात गत, अभी वैकृत मिश्र में दूसरा चौथा गुणस्थान स्वस्थान वेदना और कषाय। सासादन सम्य दृष्टि और असंयत सम्य दृष्टि जीव सामान्य लोक आदि चार लोगों के असंख्यात वे भाग में और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। तीर्य आपका प्रश्न है, मिथ्या दृष्टि जीव को तीर्य लोक का संख्यात्व भाग लिया, मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न होने वाले, तो मिथ्यात्व के साथ वैकृत मिश्र में उत्पन्न होने वाले जीव उनकी संख्या ज्यादा भी होगी एक, और उनकी एरिया भी ज्यादा होगी। वैकृत मिश्र में कौन उत्पन्न हो गया? मेजोरिटी तो तीर्यों से तो ज्यादा ही उत्पन्न हो गया। और वो नारकी में सब नीचे तक जाने वाले सारे पीरियंच एक उसकी अपेक्षा में मनुष्य भी जा सकते हैं, परंतु उनकी संख्या लेना है। वैकिरिक मिश्र के साथ उत्पन्न हुआ है। तिर्यक लोक का संख्यात्वा भाग यानी वो संख्या ज्यादा है मिथ्या दृष्टि में। अब यहाँ क्या लेना है, अब यहाँ किसकी बात है, दूसरा और चौथा गुणस्थान वाला, दूसरे चौथे गुणस्थान के साथ, दूसरे के साथ कहाँ कहाँ उत्पन्न हो गए, सासाधन के साथ तो नरक में कोई नहीं जाएगा, तो वैकिरिक मिश्र कहाँ कहाँ होगा, बहुनत्रिक में भी होगा, सासाधन के साथ वहाँ उत्पन्न हो सकते हैं, और ऊपर जहाँ तक ग्रहवेग तक कहीं पर भी जा सकते हैं। ग्रहवेग में जा सकते कि नहीं सासाधन वाले, जिसने जो प्रथम ऑप्शन संयुक्त के साथ छठा सातवां चालू है उसका, सातवां छठा सातवां छठा, और वहां से गिरकर वो सासाधन में आ गया, और बाह्य में तो है ही भावलिंगी तो द्रव्यलिंगी है ही, वो तो वहां पहुंच गए, ऐसा हो सकता है ना, ग्रह वेग पर जा सकते, ग्रह वेग में जा सकता है, हाँ जा सकता है, जा सकता है, क्योंकि वो मुनिराज तो है ही, मुनिराज जो है प्रथम उपशम के साथ सातवां गुणस्थान प्राप्त किया, सातवां छठा चल रहे हैं, अब वहां उसी के काल में छठे से गिरकर दूसरे में आ गए, और पहले वहां की आयु बांधी है, वही सब सहनन है, वो सब बाकी सब नियम है वहां पर, तो जा सकते वहां पर, द्रव्यलिंगी की बात है, परंतु वो तो प्रथम उपशम से आया ने भावलिंगी हुए थे कि नहीं, खाली समय को प्राप्त नहीं करता है, हाँ द्रव्यलिंगी जो है अभी प्रथम उपशम किया है, हाँ प्रथम उपशम उसने चौथे का किया या पांचवे का किया या सातवें का किया, कुछ भी हो सकता है, और फिर वो सासाधन में आया है, ऐसा नहीं है, यानी चौथे तक ही पहुंचा है और वो सासाधन, यानी द्रव्यलिंग है ही, अभी वो भावलिंगी बनकर भी सासाधन में आ सकते हैं, हाँ यानी आपने खाली सम्यक तो कह दिया, यानी चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है, सातवा भी हो सकता है, और वो गिरकर सासाधन में आया, यही कहना है ना आपको, बराबर है। इनका क्या प्रश्न था तेजल का, ऊपर जो क्या लिखा था, तिर्यक लोक का संख्यात्वा भाग लिया था मिथ्या दृष्टि के लिए, और दूसरे और चौथे के लिए, क्योंकि मिथ्या दृष्टि की संख्या कितनी है एक बात तो उसको भी लेना है, और यहाँ तो पल्ले के असंख्या से भागी हो सकती है दूसरे और चौथे की, और मिथ्या दृष्टि तो कितनी ज्यादा हो सकती है, वैकिरिक मिश्र भले ले लो पर उनकी संख्या ज्यादा होगी, इसलिए यहाँ चार लोगों के असंख्या से भाग में लिया। अब यहाँ ये 39 नंबर का सूत्र, आहार काय जोगीसु, आहार मिस्स काय जोगीसु, प्रमत्त संयता, एक ही गुणस्थान है प्रमत्त संयता, केवड़ी खेते लोगस असंख्य यदि भागे, आहार काय योगियों में और आहार मिश्र काय योगियों में प्रमत्त संयत गुणस्थान वर्ती जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, उन इन योगों में अन्य कोई गुणस्थान नहीं है, लोग के असंख्यातवे भाग में रहते हैं। अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, स्वस्थान स्वस्थान और विहारवत स्वस्थान, क्योंकि आहार शरीर के साथ विहार हो रहे हैं ना, इन दोनों पदों से परिणत आहार का योगी प्रमत्त संयत सामान्य लोक आदि चार लोगों के असंख्यातवे भाग में, क्योंकि मनुष्य लोक के बाहर तो जाएंगे नहीं, और मानुष क्षेत्र के संख्यातवे भाग में रहते हैं, मारणांतिक समुद्घातगत आहार का योगी सामान्य लोकादि चार लोगों के असंख्यातवे भाग में और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि जहां तक मारणांतिक करेंगे उसके कैलकुलेट करना होगा। आहार का योगी प्रमथ संयत के उक्त तीन पदों के सिवाय शेष सात पद नहीं होते, यानी वेदना और कषाय भी नहीं है उनके, है ना, बाकी आहार के समय बैक्टीरिया भी नहीं होगे, तेजस भी नहीं होगे, सब स्वस्थानगत आहार मिश्र काय योगी प्रमत्त संयत सामान्य लोग आदि चार लोगों के असंख्यातवे भाग में और मानुष्य क्षेत्र के संख्यातवे भाग में रहते हैं, क्योंकि एट ए टाइम कितने जीव हो गए उसको और अपने अपने जगह में हो गए वो तो संख्यातवा भाग हो जाएगा। अब यहीं रुकेंगे हम। जावानी